वैद्यनाथ, प्रकृतिनाथ, प्राणेश्वर बाबा के आप सभी राज ऋषि मास्टर वैद्यनाथ, सुप्रीम हीलर बाबा के आप सभी मास्टर सुप्रीम हीलर राज ऋषियों को बहुत बहुत प्रेम और सम्मान। आप सभी संपूर्ण रूप से स्वस्थ रहे, सेवा साधना निर्विघ्न चलती रहे, यही हमारी शुभकामना है और प्रयास भी है कि हमारे साथ साथ विश्व की सर्व आत्माएं स्वस्थ और प्रसन्न रहे। आज का जो विषय है वो स्वास्थ्य संबंधित है। हर मनुष्य की इच्छा होती है कि हम लंबा जीवन जिए, आयु बढ़े, लेकिन जीवन स्वस्थ हो और खुशियों से भरपूर हो। अगर स्वास्थ्य अच्छा ना हो, खुशी नहीं हो जीवन में, तो जीवन भी बोझ लगता है। और अनेक आत्माएं ईश्वर से भी प्रार्थना करती हैं, इससे तो हमें या कोई दुखी बीमार है कि ईश्वर इसको मुक्ति दे ताकि ये या हम मैं कष्टों से मुक्त हो जाऊं, ऐसा अक्सर हम देखते हैं। परमपिता परमात्मा शिव बाबा कहते, एवर लास्टिंग हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस आपका ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है, लेकिन कोई भी अधिकार जीवन में प्राप्त करने के लिए हमें कुछ ना कुछ प्रयास अवश्य करना पड़ता है। अधिकार से फायदा यही होता है कि प्रयास बहुत थोड़ा होता है और प्राप्ति बहुत ज्यादा होती है, कि लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, उत्तराधिकार का नियम, उसमें ज्यादा मेहनत नहीं होती, सिर्फ थोड़ी सी पात्रता चाहिए। और पात्रता भी क्या है, माता पिता की संपत्ति प्राप्त करने के लिए हमें थोड़ा सा आज्ञाकारी बनना पड़ता है, थोड़ा सा परहेज करना पड़ता है, थोड़ा सा पुरुषार्थ करना पड़ता है, तो बहुत कम मेहनत से ही हम बहुत कुछ पा जाते हैं। तो बाबा भी कहते कि बच्चे आप भी थोड़ा अगर अटेंशन रखें और थोड़ा पुरुषार्थ करें तो ये जन्म सिद्ध अधिकार है, ये वर्षा और वरदान के रूप में आपको प्राप्त हो जाएगा। इसके लिए तीन कदम बाबा बताते। पहला है ज्ञान। बाबा कहते, कुछ मुरली में बाबा ने व्यक्तवाणी में भी कहा कि आत्मा परमात्मा का ज्ञान तो बच्चों के पास है, लेकिन प्रकृति का ज्ञान भी, शरीर का ज्ञान होना भी आवश्यक है, तभी आप नॉलेजफुल कहलाएंगे। प्रकृति को कैसे चलाएं हम, स्वराज अधिकारी होकर प्रकृति पति हैं, तो उस प्रकृति को चलाने की कला भी होनी चाहिए। अगर प्रकृति का ज्ञान नहीं है या इसको हम ठीक से चला नहीं पाते तो उसको नॉलेजफुल नहीं कहेंगे। भले आत्मा का ज्ञान है लेकिन प्रकृति का भी ज्ञान बहुत जरूरी है। तो आत्मा परमात्मा, कर्म की फिलॉसफी और प्रकृति का ज्ञान, स्वास्थ्य के नियमों का ज्ञान बहुत जरूरी है। दूसरा है राजयोग का प्रयोग। राजयोग की शक्ति, राजयोग हम सब जानते हैं कि सर्व योगों में सर्वश्रेष्ठ, और एक तो हठ योगियों का राजयोग है अष्टांग योग, ये सहज राजयोग जो स्वयं परमात्मा बाबा ने सिखाया, सोचो कितनी शक्ति होगी। लेकिन क्या होता है कि कई बार कोई चीज हमें सहज मिल जाती है ना, बिना मेहनत के, और वो भी इतनी ऊंची चीज, तो उसकी वैल्यू हम समझते नहीं है। अब हम देखते हैं ना महारथी दादियां कैसे, हम अलबेले थे उनके साथ में, बहुत से लोग जब खो जाती है कोई चीज तो पता पड़ता है कि उसका कितना महत्व था, है ना। बाबा की मुरली कुछ प्यार से सुनी, कुछ अटेंशन से सुनी और कुछ अलबेले पर में, लेकिन पढ़ाई समाप्त। अब सोचते हैं कि काश एक टर्न और मिल जाता, बाबा से और मिल लेते, तो खोने के बाद पता लगता है कि हमने क्या खोया है। अभी तो बाबा व्यक्त रूप में हमारे साथ हैं, तो राजयोग की शक्ति का प्रयोग, योगी लोग कितनी चमत्कारिक प्रयोग करते हैं स्वास्थ्य के ऊपर। हिस्ट्री शास्त्र अनेक घटना इतिहास बताता है कि मात्र स्पर्श मात्र से ही असाध्य रोग ठीक हो जाते थे, साधु सन्यासी अनेक ऋषि मुनि। तो जब परमात्मा की शक्ति है तो हम क्या चमत्कार नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम प्रयोग ही नहीं करते हैं तो उससे रिजल्ट भी नहीं मिलती, तो निश्चय और नशा नहीं होता है। और जब एक बार हमें कोई रिजल्ट मिल जाता है किसी चीज का, तो हम बार बार उसको स्वतः ही प्रयोग करते हैं। एक बार मैं दादी गुलजार जी से बात कर रहा था जब ग्लोबल में थे, तो हमने कहा दादी जी आप बाबा का राजयोग तो बहुत हमारा बहुत शक्तिशाली है, इसको हेल्थ में कहाँ प्रयोग कर सकते हैं। तो दादी जी ने मुझसे कहा कि डॉक्टर टीबी और कैंसर को छोड़कर हर बीमारी पर राजयोग की सफलता हो सकती है। और हमारे यहाँ कुछ भाई बहने हैं, सूरज भाई खासतौर से और भी अनेक भाई बहनों का, उन्होंने प्रयोग किए हैं इस पार्क के अंदर अनेक रोगों के ऊपर राजयोग के, और बहुत सुंदर रिजल्ट मिले हैं प्रमाणित। तो अगर हम उसका प्रयोग करें तो निश्चित रूप से हम काफी हद तक प्रकृति को शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। तो कुछ रोग ऐसे होते हैं, दो रोगों में खासतौर से दादी जी ने मना किया, भले उसमें भी लाभ होता है लेकिन ये सोचना कि वो परमानेंट क्या हो जाएगा, बहुत सारे कारण होते हैं उसके पीछे, लेकिन बाकी रोगों में तो रिजल्ट बहुत जल्दी मिल जाता है। तो राजयोग का प्रयोग। और तीसरा है सकारात्मक जीवन शैली। ये हम जानते हैं कि ये शरीर पांच तत्वों का बना है, पृथ्वी से पैदा होने वाला फूड, जल अग्नि माना एनर्जी, वायु ऑक्सीजन, और आकाश हमारा जो इनर और आउटर एटमॉस्फेयर है, ये पांच तत्वों का ये बना हुआ शरीर है। तो जैसे कोई मकान कई तत्वों से बनता है, सीमेंट है, स्टील है, रेत है, ऐसे ही लकड़ी है, अगर ये पांचों तत्व भी दूषित हों या असंतुलित हो, सीमेंट ज्यादा डाल दें, लोहा कम लगा दें, तो शरीर की मकान की स्थिति कैसे होगी। ऐसे ही ये पांचों तत्व इस समय प्रदूषित हैं और असंतुलित हैं। प्रदूषित तो अनेक कारणों से है, उसमें हम कुछ ज्यादा कर नहीं सकते, लेकिन असंतुलित वो हमारी कमी से है। कोई मीठा ज्यादा खाता है, कोई घी ज्यादा खाता है, कोई बिल्कुल नहीं खाता है। तो जो तत्वों को असंतुलित रूप में ले रहे हैं और अशुद्ध रूप में ले रहे हैं, केमिकल्स हैं, मार्केट प्रिपरेशंस हैं, तो ये सब चीजें, इतने केमिकल्स, मोर देन 2000 इसमें प्रिजर्वेटिव डालते हैं, बाद में पता पड़ता है कुछ कैंसर पैदा कर रहे हैं, कुछ एलर्जी पैदा कर रहे हैं, कुछ और बीमारियां पैदा कर रहे हैं। तो ऐसे अनेक रोग पैदा होते हैं अशुद्धियों की वजह से या असंतुलन की वजह से या संयमहीनता की वजह से, भोजन आदि में आसक्ति की वजह से। तो जो सकारात्मक जीवन शैली है, अगर हम उसको ठीक कर लें तो निश्चित रूप से अनेक रोगों से हम बच भी सकते हैं, और अगर कोई रोग आ जाए तो कम दवाइयों से कम समय में ठीक भी कर सकते हैं। तो वैसे तो स्वास्थ्य एक ऐसा विषय है कि इसमें जितना हम डिस्कस करेंगे उतना अच्छा भी लगेगा, इच्छाएं बढ़ेंगी, लेकिन समय की मर्यादा को देखते हुए थोड़ा सा आपको बताएंगे, फिर समय मिला तो फिर कभी उस विषय में चर्चा करेंगे। तो पांचों तत्व हमने देखा कि जो हेल्थ है, तो अधिकतर लोग समझते हैं कि हेल्थ माना शरीर में कोई रोग नहीं है। उससे पूछो भाई आप हेल्दी हो, बोले हाँ शरीर में कोई रोग नहीं है, लेकिन ये एक निगेटिव डेफिनेशन है विदेशी, जिसे कहते हैं हील्ड स्टेट। हेल्थ माना जो हाइजीन शब्द से बनता है, या कहते हैं हील्ड स्टेट ऑफ बॉडी, लेकिन शरीर में रोग दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं शरीर में रोग नहीं हो सकता है। कई बार आइसबर्ग फिनोमेना होती है, जब समुद्र में आइसबर्ग का एक छोटा सा हिस्सा नजर आता है तो मेजर पार्ट उसका पानी में डूबा रहता है, बड़े बड़े जहाज टकरा के टूट जाते हैं। ऐसे ही शरीर में रोग अचानक नहीं होता, कोई भी रोग की तैयारी पहले ही हो रही होती है, छिपा हुआ होता है, वो अचानक प्रकट हो जाता है, तब लगता है अचानक हार्ट अटैक हो गया, अचानक पैरालिसिस हो गया, अचानक कुछ नहीं होता है। वो पहले से ही उसकी आर्टरी धीरे धीरे ब्लॉक होते होते एक दिन जब पूरा 100% ब्लॉक हो जाती है, तब हम सोचते हैं अचानक हो गया, अचानक नहीं होता है। आइसबर्ग फिनोमेना होती है, अंदर रोग धीरे धीरे पनपता है, पता बाद में पड़ता है। तो अगर हम ध्यान रखें तो हेल्थ के भी कई डायमेंशंस हैं, जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से जो हेल्थ है इसके 3 आयाम हैं, फिजिकल हेल्थ शारीरिक, मेंटल हेल्थ मानसिक स्वास्थ्य हमारा, और सोशल हेल्थ सामाजिक स्वास्थ्य, और चौथा जो इसमें ऐड किया वो है स्पिरिचुअल हेल्थ। तो आजकल क्या है कि 3 हेल्थ के बारे में तो हम सब जानते हैं, फिजिकल मेंटल सोशल, लेकिन जैसे कोई मकान तो बहुत सुंदर बनाए और फाउंडेशन डाले नहीं उसके अंदर, तो उसका मकान कैसे होगा, थोड़ा तूफान आएगा गिर जाएगा। ऐसे ही शरीर जो हेल्थ है, आजकल इतने संधन साधन टेस्टिंग बाकी चीजें अवेलेबल होते हुए भी स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी नहीं है। बच्चा पैदा बाद में होता है, माँ को इंजेक्शन पहले चालू हो जाते हैं, फिर बच्चे को चालू होते हैं और जिंदगी भर दवाइयां मेजोरिटी लोग मेजोरिटी टाइम इस्तेमाल करते हैं। तो कारण क्या है कि जो स्पिरिचुअल हेल्थ है, जो फाउंडेशन है वो नहीं है, और स्पिरिचुअल हेल्थ नहीं होने की वजह से हम अनेक बीमारियों के ग्रसित हो जाते हैं। तो अगर फाउंडेशन ठीक हो जाए तो बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। वास्तव में जो हमारा जो शब्द है स्वास्थ्य, ये अपने आप में एक मंत्र है, और बाबा ने सिखाया स्वास्थ्य माना जो स्वयं में स्थित है वही स्वस्थ है। तो स्वयं माने क्या, आत्मा, निज आत्मा, स्वधर्म में स्थित होने से स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, यह है मंत्र। और जो स्वधर्म में स्थित है वही स्वस्थ है, अगर स्वधर्म में स्थित नहीं है तो कोई ना कोई बीमारी देर सवेर हमारे सामने आएगी जरूर। तो स्वधर्म क्या, स्वधर्म तो हम सब जानते हैं, हम तो आध्यात्मिक लोग हैं। स्वधर्म माना आत्मधर्म का मतलब दो होते हैं, धर्म का मतलब गुण भी होता है, जैसे पानी का धर्म शीतलता, अग्नि का धर्म जलाना, और धर्म का मतलब फर्ज भी होता है, हमारा क्या फर्ज है। तो स्वधर्म में स्थित होने में, यानी कि अपना जो मूल गुण है आत्मा का उसमें स्थित होने से, और जो हमारा कर्म है फर्ज है उसका पालन करने से संपूर्ण स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। और उसमें जो चारों आयाम है हमारे फिजिकल मेंटल सोशल ऑटोमेटिकली पूरे हो जाते हैं अगर हम स्वधर्म में स्थित हो जाएं। तो ज्ञान में भी तो हम यही अभ्यास करते आए ना शुरू से अब तक, पहला पाठ भी यही और अंतिम पाठ भी वही। अब वैसे तो बहुत सारे कारण हैं बीमार पड़ने के, किसी ज्योतिषी से पूछेंगे तो वो कहेगा भी तुम्हारा शनि खराब है, राहु केतु बिगड़ रहे हैं, मंगल नाराज है, हैं? तो बुध जरा अपने स्थान से खिसक गया है, कुदृष्टि पड़ रही है दूसरे ग्रहों की, वो भी सही है अपनी जगह, कुछ लाभ मिल जाता है। अगर होम्योपैथी में जाएंगे तो कहेंगे भी सिफिलिस सोरा साइकोसिस 3 बीमारी है, ये बिगड़ रही है। आयुर्वेद में जाएंगे कहेंगे भी पित्त कफ वायु सर्दी गर्मी गड़बड़ हो गई है, इनका बैलेंस बिगड़ गया है, वो भी ठीक है। नेचुरोपैथी में जाएंगे तो कहेंगे भाई 5 प्राण हैं, प्राण पान व्यान समान और उदान, इनकी वो बिगड़ गई है, असंतुलित हो गए हैं, इस वजह से रोग हो रहा है, तो पंचकर्म का ट्रीटमेंट चालू करेंगे, प्राणायाम बताएंगे, वो भी सही है। तो सभी अपनी अपनी जगह सही है। और अगर कोई आध्यात्मिक पुरुष से पूछेंगे कहेंगे भाई तुम्हारा कोई कर्म पाप कर्म का प्रभाव है, तो तुमने कोई पाप किए हैं पूर्व जन्म में इस जन्म में, इसकी वजह से ये कर्म भोग आ गया है तुम्हारा। सब अपनी जगह सही है, क्योंकि सभी के द्वारा कुछ ना कुछ लाभ मिलता है, लेकिन संपूर्ण लाभ किसी भी पैथी में नहीं मिलता। तो कुछ ना कुछ अगर सबको हम लेके चले तो हर एक से कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी मिलकर अच्छा लाभ मिल सकता है। तो परमात्म ज्ञान कहता है कि अगर आप इन 3 चीजों का पालन करोगे तो उसमें ज्योतिष होम्योपैथिक आयुर्वेदिक एलोपैथिक, एलोपैथी वाले कहेंगे भी विटामिन आ गई है, कोरोना वायरस आ गया है, ये फलाना बैक्टीरिया आ गया है, लेकिन मूल कारण जो देखा जो समझ में आया हमें जो बाबा ने टच किया बुद्धि को कि मूल कारण 3 है जिसकी वजह से सारे रोग कम शरीर में आते हैं। जब देश कमजोर होता है दुश्मन हमला करता है, अगर देश शक्तिशाली है तो ना पाकिस्तान आएगा ना चाइना आएगा ना कोई और आएगा। तो देश मजबूत होगा तो कोई भी किसी की हिम्मत नहीं जो हम पे अटैक कर जाए। तो आजकल कोरोना पीरियड में इम्यूनिटी शब्द सबने सुना होगा कि भाई इम्यूनिटी बढ़ाओ। तो इम्यूनिटी माना प्रोटेक्शन पावर शरीर की, प्रतिरोधक शक्ति। तो आखिर इम्यूनिटी कम होती क्यों है, तो 3 आई नजर आए इम्यूनिटी। फर्स्ट आई ये बिगड़ती है तीन कारणों से, सारे रोग तीन कारणों से अगर आध्यात्मिक जो बाबा ने टच किए, पहला है इम्प्योरिटी, फर्स्ट आई है इम्प्योरिटी, अशुद्धता, चाहे वो भोजन तत्वों की हो, गंदा भोजन खा रहे हैं, बाजारी भोजन खा रहे हैं, मार्केट प्रिपरेशन खा रहे हैं। बाबा ने तो कहा घर का बना बाबा की याद में शुद्ध सात्विक भोजन खाओ, ना प्रिजर्वेटिव आएगा, ना वायरस घर से बाहर से आएगा, ना बैक्टीरिया आएगा, ना गंदगी आएगी, सस्ता शुद्ध बढ़िया पौष्टिक भोजन घर में। तो बाबा ने एक ही सेंटेंस में, कहते ना तीन लोक में विष्णु जी ने 52 अवतार रख के तीनों लोक नाप लिए, तो बाबा भी एक ही फॉर्मूले में एक ही मंत्र में सब कवर कर लेता है। बच्चे अपनी कमाई का, शुद्ध कमाई का, शुद्ध सात्विक भोजन बाबा की याद में बनाओ, भोग लगाओ और बाबा की याद में खाओ। अगर इसको साइंटिफिक वे में ले में, एक घंटा लगेगा एक्सप्लेन करने में, लेकिन आप कहेंगे कितना साइंटिफिक तरीका है, अगर इतना पालन कर लें तो मैं समझता हूँ 80% रोगों से बच जाएंगे आप। इसको एक बिल्कुल एक्सप्लेन करके साइंटिफिक, सिर्फ बाबा ने कहा बच्चे बाबा की याद में साथी भोजन खाओ, याद में बनाओ, याद में खाओ, तो इसका साइंटिफिक एस्पेक्ट तो फिर कभी डिस्कस करेंगे। तो इम्यूनिटी, इम्प्योरिटी ऑफ फूड एलिमेंट्स, पानी अशुद्ध, भोजन अशुद्ध, कुछ भी हो। दूसरा इम्प्योरिटी ऑफ थॉट्स, हम जानते हैं जब मन में अशुद्ध संकल्प चलते हैं बीपी बढ़ जाता है, शुगर बढ़ जाती है, केमिकल्स पैदा हो जाते हैं, एसिडिटी बढ़ जाती है, डायरिया हो जाता है, किसी को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, किसी को नर्वसनेस आ जाती है, किसी को डिप्रेशन हो जाता है। कारण सिर्फ क्या है, इम्प्योर थॉट्स। हम सब जानते हैं आध्यात्मिक लोगों को तो अनुभव है, एक इम्प्योर थॉट कितना एकदम समान से गिर जाते हैं तो क्या हालत हो जाती है। इम्प्योरिटी ऑफ थॉट्स, मानसिक स्वास्थ्य खराब। इम्प्योरिटी ऑफ फूड एलिमेंट्स, शारीरिक स्वास्थ्य, फिजिकल हेल्थ खराब। इम्प्योरिटी ऑफ रिलेशंस, जब संबंधों में हमारा स्वार्थ आ जाता है या छल कपट आ जाता है तो संबंध बिगड़ जाते हैं। और एक बार विश्वास टूट गया पूरे जीवन कोई दूसरा द्वारा विश्वास नहीं करेगा, सोशल हेल्थ खराब। और कोई विकार आ जाए तो स्पिरिचुअल हेल्थ खराब। इम्प्योरिटी किसी भी तरह की हो, फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल, इन सब हेल्थ को बिगाड़ देती है। दूसरा है इम्बैलेंस, दूसरा आई, सेकंड आई है इम्बैलेंस, माना असंतुलन। किस चीज का? भोजन तत्वों का। कोई पानी ज्यादा पी रहा है, 5-6 लीटर पानी पी रहा है, एक तो वैसे ही पानी की शॉर्टेज वेस्ट कर दिया। फिर बाथरूम भागेगा तो 5 लीटर पानी निकालने के लिए कितनी बार जाएगा वो, कितनी बार फिर हाथ धोएगा, कितना टाइम वेस्ट करेगा। तो हम कोई पशु थोड़े है कि 5-6 लीटर पानी पियेंगे बाल्टी भर के। शरीर को जितनी आवश्यकता है 8-10 ग्लास बहुत है। हाँ कहीं भाई चलो पथरी हो गई, स्टोन हो गया किडनी में, तो चलो और 1-2 लीटर बढ़ा लो, लेकिन इतना टू मच में जाने की जरूरत क्या, शरीर की धातु में निकल जाती है फालतू। तो इतना पानी आवश्यक नहीं है, शरीर को गंदगी निकालने के लिए 1.5 लीटर पानी चाहिए। पसीना निकल गया गर्मी में तो चलो 0.5 लीटर और जोड़ लो, चलो और 0.5 लीटर जोड़ लो, तो बहुत से बहुत 2.5 लीटर पानी, यानी कि बहुत से बहुत 8-10 गिलास 12 गिलास पानी पी रहे हैं अगर पथरी वगैरह है। इससे ज्यादा पानी पीना बॉडी को नुकसान करता है, लेकिन इतना पानी जरूरी है। बहुत से लोग बिल्कुल पानी पीते ही नहीं, कम पानी पीने से कॉन्स्टिपेशन हो जाता, फिशर्स हो जाती हैं, पाइल्स हो जाते, किडनी स्टोन हो जाते, यूरिन इन्फेक्शन बार बार होगा, डिहाइड्रेशन हो जाता, बीपी फॉल हो जाता। इसलिए असंतुलन, ओवर भी या अंडर, ज्यादा या कम अगर करेंगे भोजन तत्वों का तो बीमारियां पैदा होती हैं। और संतुलन में तो बहुत सारी बीमारी छुटकारा पा जाएंगे। पानी बहुत सारी बीमारियों का इलाज है, लेकिन संतुलित मात्रा में और शुद्ध पानी हो। ऐसे ही इम्बैलेंस ऑफ दिनचर्या, कई बार टू मच, बहुत से लोग इतना जगेंगे और फिर दिन में झुटके खाएंगे, अमृत वेले भी, मुरली में भी, काम के टाइम पे भी, वर्किंग प्लेस में भी, बॉस भी नाराज, या फिर इतना सोएंगे ये सारी दिनचर्या खराब है, सोते रहते हैं और सोचते रहते हैं अरे ये नहीं किया वो नहीं किया। तो संतुलन, दिनचर्या हो, चाहे भोजन तत्व हो, चाहे संबंध, जैसे बाबा कहते हैं ना न्यारा और प्यारा, या तो हम इतने ज्यादा प्यारे हो जाते हैं बिल्कुल टू मच झुकाव लगाव, और या फिर इतने डिटैच हो जाते हैं सेकंड में, नाराज हो गए तो सामने से गुजरता तो मुंह घुमा के चल देते हैं। तो संतुलन, सोशल हेल्थ खराब हो गई। तो असंतुलन चाहे वो संकल्पों का हो, चाहे वो रिलेशंस का हो, चाहे दिनचर्या का हो या भोजन तत्वों का हो, तो वो नुकसान करता है। ऐसे बाबा कहते हैं बच्चे ज्यादा हवच मत रखो, इतना भी मत कमाओ कि सुबह से रात तक पैसा कमाने में लगे रहो और आपका जो आत्मिक कमाई है वो खत्म हो जाए। और ऐसा भी नहीं कि आत्मिक कमाई में लगे रहो और घर में परिवार के सदस्य दुखी हो जाए कि घर का खर्चा नहीं चल, सारे दिन सेंटर पे पड़ा रहता है या सारे दिन जो और इधर उधर सेवा में लगा रहता है जो शरीर परिवार की आवश्यकताएं पूरी नहीं कर रहे। इसलिए बामन का 8 घंटे कमाओ, 8 घंटे आत्मा के लिए, 8 घंटे शरीर के लिए। तो संतुलित दिनचर्या, संतुलन जब भी बिगड़ेगा, संतुलन असंतुलन आएगा तो कुछ ना कुछ हेल्थ बिगड़ जाएगी। और तीसरा इग्नोरेंस आई, थर्ड आई है इग्नोरेंस माना अज्ञान। हमें ज्ञान नहीं है, चाहे वो आत्मिक हो, चाहे वो योग की विधि हो या उसका अभ्यास हो, या स्वास्थ्य का ज्ञान नहीं है, पता ही नहीं है क्या चीज खानी चाहिए क्या नहीं खानी चाहिए, कितनी खाएं कितनी नहीं खाएं, तो उससे भी रोग पैदा होते हैं। तो इन तीन आई को हटाने के लिए इम्प्योरिटी, इम्बैलेंस, इग्नोरेंस, हमको तीन चीज लानी पड़ेंगी। प्योरिटी, तो एक है पवित्रता, एक है स्वच्छता, थोड़ा फर्क है। पवित्रता एक स्पिरिचुअल है और स्वच्छता एक भौतिक चीज है। भोजन तत्व है, वायुमंडल है, कपड़े हैं, स्नान है आदि आदि, जो स्थूल स्वच्छता है तो उसका पालन करेंगे तो शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होगा। और अगर प्योरिटी आत्मा की सेलिब्रेसी और बाकी जो निर्विकारिता है उससे हमारा आत्मिक स्वास्थ्य अच्छा होगा, तो बाकी तीन स्वास्थ्य भी अच्छे हो जाएंगे। तो फाउंडेशन तो स्पिरिचुअल हेल्थ है। अब इन तीन चीजों को संतुलन करने के लिए कुछ छोटे छोटे फैक्ट्स हैं, अगर वो ध्यान रखेंगे। 5 तत्वों को कैसे संतुलित करें, कैसे शुद्ध करें, तो शरीर को सबसे ज्यादा आवश्यकता किस चीज की होती है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अगर नहीं हो तो शरीर बहुत जल्दी डेड हो जाएगा, भोजन के बिना कुछ देर रह सकता है। सेकंड जरूरी है पानी, तीसरा जरूरी है भोजन, चौथा जरूरी है एक्सरसाइज। तो ABCD अगर ध्यान रखें, स्वास्थ्य की शुद्ध हवा, तो माउंट आबू में तो भाई ये बहुत बहुत बड़ा वरदान है, गिफ्ट है, ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन है चारों तरफ, लेकिन शहरों में रहते हैं वहां तो पॉल्यूशन बहुत है। और ये देखा गया सर्वेज में कि जो पॉल्यूशन सड़कों पे भार होता है, घर के अंदर पॉल्यूशन की जो परसेंटेज है भार से भी ज्यादा होती है, उसका कारण क्रॉस वेंटिलेशन नहीं होता है। इसलिए घर में क्रॉस वेंटिलेशन रखें, अगर संभव नहीं हो, घर ऐसे आजकल छोटे छोटे हो गए हैं, तो उसमें एग्जॉस्ट का इस्तेमाल करें, खासतौर से किचन में, बेडरूम में, टॉयलेट्स में, तो उससे स्वच्छ हवा आएगी, ऑक्सीजन का प्रभाव रहेगा, तो बहुत सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। चिड़चिड़ापन नहीं होगा, थकान नहीं होगा, आप खुले छत में सोएं छत पे, और आप घर के अंदर कमरे में बंद कमरे में सोएं, आप देखेंगे कि स्वच्छ खुले में सोने से आपकी आंखें जल्दी खुल जाएंगी, सुबह के टाइम फ्रेश उठेंगे, और बंद कमरे में 10 घंटे सोने के बाद भी थकान बनी रहती है, ऑक्सीजन ही कम, चिड़चिड़ाहट जल्दी हो जाएगी, ऑक्सीजन कम होगा तो बहुत सारी चीजें होती है। तो शुद्ध ऑक्सीजन, शुद्ध पानी, आजकल आरओ का चल पड़ा है फैशन की आवश्यकता भी है, पानी बहुत अशुद्ध हो गया है, लेकिन आरओ में आजकल पानी इतना मतलब सॉल्ट्स निकाल देते हैं कि सॉल्ट्स की कमी हो जाती है, एसिडिक हो जाता है, तो उसमें बायटे आने लगते हैं, क्रैम्प्स, मसल क्रैम्प्स चालू हो जाते हैं, तो इसलिए एल्कलाइन आरओ का इस्तेमाल करना चाहिए बजाय एसिडिक। पीएच देख लें, थोड़ा सा खारी होना चाहिए, क्योंकि ब्लड की जो पीएच है वो खारी होती है, तो इसलिए पानी भी जो है खारी होना, ज्यादा एसिडिक पानी लेने शरीर में और नुकसान पैदा हो जाते हैं। तो पानी ज्यादा भारी होगा तो पथरी बन जाएगी, अगर कम सॉल्ट्स होंगे तो फिर धातुओं की कमी हो जाएगी, कैल्शियम कम हो जाएगा और धातुएं कम हो जाएंगी। तो शुद्ध पानी और संतुलित, कितना, 8 से 12 गिलास मौसम के अनुसार ले सकते हैं, लेकिन अगर दिल की बीमारी है, सूजन रहता है शरीर में, वो डॉक्टर्स की राय से देखें कितना पानी पीना है, कई बार पानी लिमिटेड भी करना पड़ता है, तो वो बीमारी है तो फिर डॉक्टर की राय से ले, अदरवाइज 8 से 12 गिलास पानी बहुत रहता है। तीसरा है भोजन तत्व में एनर्जी, अग्नि, उसके लिए प्राणायाम है, एक्सरसाइज है, नियमित करेंगे तो नॉर्मली 30 मिनट की एक्सरसाइज सबको करनी चाहिए, घूमने वाली या फास्ट तो दौड़ने वाली। और अगर रोज नहीं कर सकते हैं तो एक दिन छोड़कर 45 मिनट रोज करनी चाहिए, हफ्ते में 3 दिन। तो मिनिमम इतनी एक्सरसाइज करेंगे तो जो भोजन खाते हैं उससे अग्नि बनेगी तो शरीर को ताकत। कई बार लोग बहुत खाते हैं लेकिन फिर भी थकान महसूस करते हैं, तो उसके कई कारणों में एक कारण लैक ऑफ एक्सरसाइज है। सुबह समय नहीं मिलता, सांझ को करें, खाने से आधे घंटे पहले या खाने के 4 घंटे बाद एक्सरसाइज करेंगे तो शरीर में गर्मी ताकत पैदा होगी, एनर्जी पैदा होगी और हर अंग अच्छा काम करेगा, BMR बढ़ जाएगा। तो कई फैक्टर्स पर बहुत सारे फायदे होते हैं। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, माना इनर और आउटर हमारी सराउंडिंग्स क्लीन और क्लियर होंगी तो उसमें मच्छर, मक्खी, धूल आदि नहीं होंगे तो बहुत सारे रोगों से बच जाएंगे। ये तो छोटी सी थोड़ी बात बताई मैंने, मेन बात आज थोड़ा सा बता, नए अनुभव के आधार पे बताता हूँ आध्यात्मिकता कैसे हेल्प करती है। स्पिरिचुअल हेल्थ अगर स्ट्रांग है तो बहुत सारे रोग अपने आप ठीक हो जाएंगे। पहली चीज समर्पण, समर्पण एक तो वो समर्पण आप सैन्य ज्ञान में यज्ञ में समर्पित हो गए वो एक अलग बात है, मैं शरीर के समर्पण की बात कर रहा हूं। कि कई बार क्या है कि शरीर तो हम जीवन समर्पित तो कर दिया लेकिन शरीर को समर्पित नहीं करते हैं बाबा को। मैं एक सच्ची घटना बताता हूं, कुछ पेशेंट थे ग्लोबल हॉस्पिटल में जब मैं था, कैंसर था उनको, बाबा के बच्चे थे, कैंसर भी अच्छी लेट स्टेज में था और भी कुछ महारत थी जिनको कैंसर हो गया, तो टर्मिनल फेज में थे, लाइलाज स्टेज में बाबा के पास गए, एफेक्ट बाप दादा के सामने, तो कहा बाबा ऐसी स्थिति है बीमारी की, और डॉक्टर्स ने जवाब दिया है। तो बाबा ने कहा बच्चे ये शरीर किसका है, तो उसने कहा बाबा आपका है। तो बच्चे मेरी चीज है मैं संभालूंगा, तू की चिंता कर रहा है नहीं? बात बड़ी सिंपल सी लगती है लेकिन है बहुत गहरी। और मैंने लिखा देखा क्योंकि बिल्कुल एकदम लाइट हो गए, बीमारी तो शरीर में रही लेकिन जो मानसिक कष्ट था, टेंशन था, परेशानी थी वो खत्म हो गई, तो उससे हीलिंग पावर बढ़ गई शरीर की। और मन निश्चिंत जब हो गया तो मन अगर शांत हो जाए, निश्चिंत हो जाए तो ऑटोमेटिकली शारीरिक कष्ट की अनुभूति भी बहुत कम हो जाती है। तो एक बार अगर हमने कोई चीज दिल से शरीर को सौंप दिया बाबा को तो फिर उससे क्या होता है, बाबा की एक तो मदद मिलती है, सहने की शक्ति बढ़ जाती है। और सहने मैंने देखा उन महारथियों को, उन आत्माओं को देखा लास्ट तक कि कैंसर लास्ट में शरीर छोड़ के पूरा हुआ लेकिन उनके चेहरे पे मैंने कभी कष्ट, तड़फन, बेचैनी बिल्कुल नहीं देखी। बहुत क्लोजली मैंने ऑब्जर्व किया उन सभी आत्माओं को। तो जब हम समर्पित कर देते हैं शरीर को तो ऑटोमेटिकली जिम्मेदारी बाबा की होती है और उसमें बाबा की शक्ति मिलने से एक तो सही शक्ति बढ़ जाती है, एक उसमें हीलिंग पावर बढ़ जाती है और हम निश्चिंत हो जाते हैं। तो ये इसका लाभ होता है अगर हम समर्पण कर देते हैं सच्चे दिल से। कई बार हम ऊपर समर्पण कर देते हैं और अंदर से चिंता करते रहते हैं तो फिर समर्पण कहाँ किया। तो समर्पण भाव से अगर हम शरीर को बाबा को अर्पण कर देते हैं, संपूर्ण समर्पण, तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य लाभ में बहुत लाभ होता है, मानसिक कष्ट तो बिल्कुल खत्म हो जाता है। दूसरा संयम, अब हमने जो शरीर समर्पण कर दिया बाबा को तो फिर भोजन या बाकी जो स्वास्थ्य के नियम है वो भी तो बाबा की प्रॉपर्टी होगी ना। तो अगर बाबा की प्रॉपर्टी समझ के उसको संभालेंगे तो फिर संयम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। माना मैं कोई चीज आपको दे दूं, अच्छा भी ये कार है इसको आप संभालो, तो आपका एटीट्यूड क्या रहेगा उसके प्रति, आप उसकी सफाई धुलाई फिर उसमें पेट्रोल डालना, टाइम पे सर्विस कराना, हर चीज बिल्कुल एक्यूरेट रखोगे क्योंकि दूसरे की चीज है। तो अगर हमने दिल से शरीर बाबा को समर्पित किया है तो फिर अनासक्त भाव आता है, फिर संयम ऑटोमेटिकली आ जाता है। ज्यादा खाना नहीं, जितना जरूरी है उतना भी खाना, ये भी नहीं भूखा रखने का है। तो ऑटोमेटिकली जब संयम आ जाता है तो हमारी जो आसक्ति है खाने में खत्म हो जाती है। फिर ये नहीं कि डायबिटीज है तो मीठा खाएं, ब्लड प्रेशर है चिकनाई खाएं, नमक खाएं, तो ऑटोमेटिकली आपका खान पीन हर चीज संतुलित हो जाएगी। तीसरा है संभाल। अगर कोई चीज हमारी है, हम संभाल रहे हैं, तो कोई एहसान नहीं है, वो तो मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन अगर हम दूसरे की चीज संभाल रहे हैं तो वो एहसान हो जाएगा दूसरे का, दूसरे पर, है ना। मैं अपना माना कोई बच्चा आपके घर में सौंप दूं तो वो सेवा मेरे खाते में जुड़ेगा, आपका पुण्य इकट्ठा होगा। लेकिन आप अपना बच्चा संभाल रहे हैं तो मुझ पर क्या एहसान है। तो अगर आप शरीर को बाबा को सौंप दिया तो फिर वो सेवा के खाते में जाता है। अगर आपने सोचा ये मेरा शरीर है अपने ढंग से चलाऊंगा, तो फिर वो मेरे खाते में है, वो बाबा के खाते में, यज्ञ खाते में नहीं जाएगा। तो अगर आपने उसको बाबा को सौंपा है तो वो उसके प्रति जो भी कर्म कर रहे हैं आप शरीर की संभाल के लिए, वो फिर सेवा खाते में। जैसे यज्ञ की आप कोई वस्तु संभालते हैं, बिल्डिंग है, कोई मशीनरी है, कोई भी चीज है, भंडारा है, तो वो सेवा खाते जाता है। इसलिए शरीर भी अगर आपने बाबा को सौंप दिया सच्चे भाव से और संयमित रूप से आप चला रहे हैं अनासक्त भाव से, तो इसके प्रति जितना भी समय आप देते हैं वो सेवा खाते जाता है। तो इसकी संभाल भी करनी है, बीमारी हो तो चेकिंग भी करानी है, है ना। चौथा है सकाश। आप हम सब अधिकतर सकाश देते हैं, पूरे विश्व को सकाश देते हैं, क्या अपने शरीर को भी सकाश देते हैं? जो अपने शरीर को सकाश देते हैं या को बाबा के शरीर को सकाश देते हैं, बाबा के इंस्ट्रूमेंट को, जरा वो हाथ उठाएंगे? अगर गिनेंगे तो कितने हाथ है, है? तो आपने बाबा के शरीर को संभाला है, बाबा का इंस्ट्रूमेंट है, तो आपने इसकी संभाल की नहीं की ना। तो जो चीज बाबा की नहीं है तो बाबा क्यों केयर करेगा भाई? आप हमारी चीज है तो हम केयर करेंगे। अगर बाबा को सौंप दी बाबा की चीज है तो फिर तो बाबा केयर करेगा ना, या उसको संभालने की अकल देगा हमें? तो ये गलती करते हैं। फिर हम कहते हैं कि देखो ब्राह्मण जीवन में भी कितने कष्ट आ रहे हैं शारीरिक, दूसरे भी कहते हैं भगवान के बच्चे हो फिर भी इतनी बीमारियां, कारण? सारे संसार को सकाश देते हैं लेकिन जो सेवा साधन, साधना का जो साधन है वो शरीर, इसको सकाश नहीं देते। तो बाबा एक का 100 गुना देते हैं, तो 24 घंटे अगर आपने 15 मिनट सकाश दिया तो 24 घंटे ये मशीनरी सही चलेगी। अगर आपने इसको सकाश 15 मिनट करके देखो लगातार अमृत वेले सब करने के बाद में 15 मिनट सकाश दे दो उसको, 24 घंटे आपकी मशीनरी सही काम करेगी। आप जो आना होगा परेशानी 24 घंटे बाद आएगी। और डेली अगर आपने नियम बना लिया तो ऑटोमेटिकली शरीर का सहयोग मिलता रहेगा। सूरज भाई अक्सर इसमें बहुत अनुभव बताते हैं, कई बार बुखार तेज आ गया कुछ आया, बोले बाबा इसको 2 दिन के बाद या 1 दिन के बाद या सेवा के बाद भेज देना, और सेवा निर्विघ्न एकदम बीमारी शांत हो गई, बाद में लौट के आ गई। तो ऐसे ही हम इसको पोस्टपोन भी कर सकते हैं और ठीक भी कर सकते हैं। तो अगर शरीर के साधन को, अगर आपने कोई कार खरीदी और आपने उसकी ठीक से संभाल कर ली, धुलाई सफाई, तेल पानी कर लिया, बैटरी चार्ज कर ली, तो वो आपका साथ देती रहेगी। तो हम अब इस शरीर को जो हमारा साधन है सेवा का, साधना का, इसको सकाश नहीं देते, इसलिए शरीर के विघ्न ज्यादा आते। तो सकाश इसका ध्यान करें, प्रयोग करें और फिर देखें। कम से कम 15 मिनट बताया 24 घंटे के लिए, अदरवाइज जितना अधिक से अधिक हो सके तो इसको सकाश देंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। और प्रैक्टिकली ये प्रूव्ड है, और आप भी अपने अनुभव बताना कि आपको कैसा लगा। तो समर्पण, संयम, संभाल, सकाश। फिर अगली चीज है साक्षीपन। शरीर में जब कष्ट आता है तो एकदम चिंतित हो जाते हैं। हमें मालूम है जब ग्लोबल हॉस्पिटल में हम यहां थे तो पेशेंट आते थे, हार्ट अटैक आया तो बहुत अक्सर मोर्टिलिटी रेट काफी हाई होती है, वो अबाउट 10%, और अधिकतर पेशेंट फर्स्ट 24 आवर्स 48 आवर्स में चले जाते हैं। लेकिन यहां जब पेशेंट आते थे तो उनको पहले में कुछ नहीं, चिंता नहीं करो सब ठीक हो जाएगा, माइनर सी परेशानी है, फिर उनको आत्मा का ज्ञान दिया, बाबा का शकास दिया, समझाया भाई तुम तो आत्मा हो, भगवान के बच्चे हो, भगवान को याद करो, तुम्हारी बीमारी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। तो हम देखते थे अधिकतर बीमारियां जो पेशेंट के लंबे समय इलाज माना, एवरेज माना 10 दिन लगते हैं किसी पेशेंट को ठीक होने में, यहाँ पेशेंट हमारे 2-3 दिन के अंदर ठीक हो जाते थे, और जो डेथ रेट थी बहुत कम हो गई, बाकी जगह के डॉक्टर्स के जो रिजल्ट्स हैं उनके मुकाबले हमारे यहाँ डेथ रेट बहुत कम होती थी, और बड़े सीरियस पेशेंट भी बहुत जल्दी रिकवर कर जाते थे। तो उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो साक्षी भाव, अगर अपने शरीर को भी साक्षी भाव से देखें, अभी कर्म भोग आया है, हमारी किसी गलती का फल है, जरूर नहीं पूर्व जन्म का कर्म भोग हो, इस जन्म की लापरवाही भी वो भी कर्म भोग है। अब हम बढ़िया कार लेके आए और उसको रफ ढंग से चलाएं, कि टक्कर मार दें, कि टेढ़े मेढ़े जल्दी जल्दी ब्रेक लगाएं उसमें, तो गाड़ी जल्दी बेकार हो जाएगी। तो इस जन्म की गलतियां मेजोरिटी मैंने देखा कि पिछले जन्म के कर्म भोग थोड़े होते हैं, इस जन्म की लापरवाहियां ज्यादा होती हैं। तो शरीर के प्रति जो शरीर हमारा साथ दे रहा है बचपन से, इसके प्रति की गई लापरवाही भी विकर्म है। जैसे बाबा के घर की कोई चीज तोड़ दो आप, मशीन भी तोड़ दो, विकर्म बना नहीं बना, कहते हो ना भाई गलत विकर्म हो गया, हमने नुकसान कर दिया यज्ञ का, तो ये भी तो यज्ञ की चीज है। अगर आपने इसकी संभाल नहीं करी या गड़बड़ प्रयोग किया तो ये भी तो विकर्म है ना। तो अधिकतर तो जो कष्ट होते इसी जन्म के लापरवाहियों का फल होता है, कुछ पूर्व जन्म का भी कड़ा हिसाब किताब हो सकता है, लेकिन मेजोरिटी तो हमने देखा यहाँ पे, यहाँ पहले दादी जी ने हेल्थ चेकअप करवाया था सरेंडर भाई बहनों का, और हमने देखा कि उसमें 90% बीमारियां सिर्फ लापरवाही शरीर के प्रति, या तो संयम की कमी, या भोजन की आसक्ति, या लापरवाही, ध्यान नहीं देना, सेवा में टू मच बिजी, अनेक कारण। तो 90% कारण हमने देखा कि वो इसी जन्म की लापरवाही, फिर वो सेहत ठीक भी हो सकती है अगर ध्यान दें। तो साक्षी भाव, अगर रोग आता है तो टेंशन नहीं करें, साक्षी भाव से देखें, चेकअप कराएं, इलाज लें, तो बहुत जल्दी चला जाएगा। और फिर है कर्मयोग। बाबा कहते हैं ना कि अगर कर्म योग से कर्म भोग को चुकता करेंगे तो सूली से सूल हो जाएगा। मैं अपना अनुभव बताता हूं, मैं जब ग्लोबल में था एक बार, अचानक रात में जैसे उठा तो अचानक चक्कर आया और गिर गया, और गिरने के बाद पैरालिसिस हो गया चारों हाथ पैर का। अब पैरालिसिस हो गया, कॉन्शियसनेस बराबर बनी हुई थी, तो मुझे तो पता था एज ए डॉक्टर भी इसका कोई इलाज तो है ही नहीं, पैरालिसिस तो अपने आप ही ठीक होती है धीरे धीरे, और परमानेंट हो गई तो रिकवरी नहीं हुई तो फिर तो जीवन बड़ा बेकार है, खुद को भी कष्ट और साथ में कितने सेवाधारी चाहिएंगे। तो मैं बाबा से बोला, तो वो युगल थी, तो मैं उनसे बोला भाई बाथरूम में गिरा तो मतलब तुम खींच के मुझे बाबा कमरे में लेटा दो। वो बेचारी कैसे करकरा खींच के ले गई मुझे और बाबा कमरे में जाके लेटा दिया। मैं बाबा से बोला कि बाबा या तो इसको ठीक कर देना और या इसको शरीर को खत्म कर देना, ऐसी क्रिपल्ड कंडीशन में मैं बिल्कुल जीना नहीं चाहता, क्योंकि इलाज तो कुछ है नहीं इसका। मैंने सिंपल डिस्प्रिन की एक टेबलेट लेके मैं चुपचाप लेट गया, तुरंत बाबा दिखाई दिए और बाबा ने एक विधि बताई मुझे। मैंने युगल से कहा कि किसी को भी बताना, हॉस्पिटल में यज्ञ में किसी को नहीं बताना, नहीं मिलने जुलने वाले सब इतने प्यार मोहब्बत में सब आ जाएंगे कि उनको अटेंड करते करते योग तो मेरा लगेगा ही नहीं, उनसे मिलने जुलने में समय बीत जाएगा। तुम सबसे ये कहना हॉस्पिटल से, कल तो मैं जा ही नहीं पाऊंगा, उनसे कहना भी एक जरूरी काम से आज छुट्टी है, डॉक्टर छुट्टी ली हुई है, कहीं बिजी है, किसी को खबर नहीं देना, ताला किवाड़ लगा देना, किसी को आने मत देना अंदर। तो उसने सबसे कह दिया भाई आजकल जरा किसी काम में बिजी है, अगर डॉक्टर हॉस्पिटल नहीं आएंगे, यहाँ यज्ञ में भी किसी को नहीं बताया। तो विधि से मैं बिल्कुल बिंदु रूप में, बाबा ने विधि बताई और मैं बिल्कुल उस रूप में स्थित हो गया। 18 घंटे बिंदु रूप में रहना असंभव है, और वो बाबा की कमाल थी कि बिल्कुल बुद्धि एक तक वहां लगी रही, मैं लेटा रहा बाबा कमरे में अब बिल्कुल बिंदु रूप में, मतलब बाबा की एक्चुअली मेहनत थी या मदद थी कि बुद्धि बिल्कुल एक टक उसमें लगी रही, और 18 घंटे बाद मेरा शरीर बिल्कुल बिना किसी दवाई के बिल्कुल नॉर्मल है। सच्ची घटना बिल्कुल। तो मैंने कहा बाबा बिल्कुल ठीक, और फिर बाबा आए यहाँ पर, पधरामणी हुई, मैं स्टेज पर पहुंचा, तो मैं बाबा से बोला बाबा आपकी मेहरबानी से ठीक हो गया। बाबा ने ऐसी गहरी मुस्कान दी, मैं समझ गया वो क्या कह रहे हैं वाइब्रेशन बाबा के, तो वो दृष्टि दी और बड़े मीठे मीठे मुस्कराए, जैसे राज होता ना, मनी मन मैंने बाबा से कहा, मुंह से तो नहीं कहा और दृष्टि से बाबा से कह के मैंने, तो बाबा की वो दृष्टि बिल्कुल स्पष्ट कह रही थी कि बच्चे बाप क्या नहीं कर सकता है ना, अगर बच्चे विधि पूर्वक और समर्पण भाव से चले। बिल्कुल ऐसा प्रयोग, और भी कई प्रयोग ऐसे हुए। एक भाई था तो उसको थोड़ा चेस्ट वेस्ट पेन था, तो उसे सोचा वैसे ही कुछ होगा, वो चेकअप वेकअप के लिए नहीं गया, तो बाबा ने किसी संदेशी को संदेश दिया कि बच्चे से कहो अस्पताल जाता क्यों नहीं है, और संदेशी को दिखाया कि एक बहुत बड़ा काला तूफान आ रहा है और बाबा ने उसको रोक रखा है तूफान को, और बाबा ने कहा बच्चे से कहो उसको, बच्चे को तो फौरन अस्पताल जाए। वो बच्चा अस्पताल गया, चेकअप लापरवाही कर रहा, दर्द नहीं है, मामूली दर्द है, कुछ होगा, तो 1.5 महीना गुजार दिया। फिर बाबा का कड़ा एकदम आदेश आया बच्चे को तुरंत भेजो, तो संदेशी ने भी संदेश दिया भाई ऐसा बाबा ने दिखाया है, तो वो अस्पताल गया, अस्पताल जाके चेकअप कराया तो उसकी आर्टरीज 90% ब्लॉक थी। अगर वो थोड़ा सा लेट हो गया होता तो परमानेंट डैमेज हो गया होता। तो बाबा ने तूफान रुका हुआ था ऐसा दिखाया, और जाके देखा तो बहुत बड़ा, जबकि क्लिनिकली तो लगता कि कुछ इतनी बड़ी बीमारी नहीं है। तो बाबा इस तरह रक्षा करता है अपने बच्चों की, और गाइड भी करता है, लेकिन समर्पण भाव हो और साक्षी भाव हो तो बाबा क्या नहीं कर सकता है। तो वो ठीक हो गया बंदा बिल्कुल और निश्चिंत। अगर काश बाबा उसको इशारा ना करे बहन को, या वो व्यक्ति ना जाए बाबा का बच्चा, तो बड़ा नुकसान हो जाए। ऐसे बहुत बाबा मदद करते हैं, अगर हमारी बाबा से सच्ची प्रीत है तो बाबा मदद करते हैं, रक्षा भी करते हैं। इसे कहा गया सूली से सूल। फिर एक सच्ची घटना मैं अपने जीवन की बताता हूं। 16 फरवरी 2002 तो हम फिलखवे में थे, और वहां से हम हर हफ्ते ओआरसी जाते थे, तब ओआरसी खुला था नया नया, तो वहां कोई डॉक्टर तो थे नहीं, तो शनिवार के दिन एक नियम बना रखा, शनिवार को जाना जरूर है ओआरसी। तो उस दिन कोहरा बहुत था, तो सबने कहा मत जाओ आज खतरा है, हमने कहा भी बाबा की सेवा है जाएंगे जरूर। तो अंदर बिल्कुल लग रहा था आज कुछ अनहोनी होनी है, ऐसा अंदर से बार बार ख्याल आ रहा था, लेकिन हमने कहा जाएंगे जरूर बाबा की सेवा है, जरा आज एक्स्ट्रा योग रखेंगे, अटेंशन रखेंगे, बिल्कुल योग जो बाबा कहते हैं, मैं रक्षा करता हूं बच्चों की अगर बच्चे मेरी शिक्षा पे चलते हैं, और शिक्षा कौन सी, योग युक्त रहेंगे तो बाबा रक्षा करेगा। तो हम दीदी से बोले, टीचर भी हमारे साथ में, दीदी गई, एक असिस्टेंट बहन थी वो गई, ड्राइवर था, हम मारुति कार, अब मारुति तो कहते हैं लोग, मारुति माना लापरवाही हुई और मार होगी, एक्सीडेंट प्रोन होती ना बहुत ज्यादा, तो चल दिए। सुबह का टाइम था 6 बजे का, उस समय रोड बन रही थी हाईवे, तो अचानक क्या हुआ, कुछ दूर जाने के बाद में आधी रोड तो बंद कर रखी थी उन्होंने रिपेयर की बनाने की वजह से, बाकी आधी रोड में एक आने की रोती है, तो आधी रोड वो ब्लॉक हो गई, बाकी 1/4 बची। कुछ दूर जाके एक ट्रक खड़ा हुआ था, कोहरे की वजह से खराब हो गया, तो ड्राइवर ने उसको बचाया, तो उससे 10 कदम पे एक मेटाडोर खड़ी हुई थी तुरंत लगी हुई, यानी कि मौत ने तैयारी पूरी कर रखी थी, उससे बचे तो फट से मेटाडोर, उससे बचाया ड्राइवर ने तो गड्ढा 10 फीट गहरा साइड में सड़क के, वो ड्राइवर ने ब्रेक मारा और गाड़ी का जो पहिया था लेफ्ट साइड का बिल्कुल किनारे पे खड़ा हो गया, अगर 6 इंच फिसल जाता गड्ढे में, तेज स्पीड में गाड़ी थी, तेज माना मीडियम स्पीड में गाड़ी थी, और गाड़ी में रुक गई, हल्की सी टकराई आगे वाली मेटाडोर से और गाड़ी ठहर गई। हम बाहर आ गए, बाहर आ तो गए हम सब, लेकिन दोबारा ड्राइवर ने सोचा गाड़ी को पीछे कर करा के बाहर ले जाए तो घुस नहीं सके, इतनी पिचक गई हो, निकले कैसे हमें पता नहीं, लेकिन अंदर दोबारा एंटर नहीं कर सके। और बाहर के जो लोग देख रहे थे कह रहे थे भैया तो 100% आज डेथ है। खैर बच के वो बाहर निकल आए। हमने कहा भी जाएंगे जरूर, जब बाबा ने इतना बचाया है तो जाएंगे जरूर ORC, लेकिन वो टैक्सी वैक्सी मिली नहीं। खैर हम वापस लौट आए, तो लौट के आने के बाद में घर पे आके दीदी ने भोग लगाया। भोग लगाने के बाद बाबा ने उसको दीदी को थोड़ा मैसेज ट्रांस में जाती थी कभी कभी, तो बाबा ने कहा चलो बच्चे तुम्हें मैं घुमा के लाता हूं। तो बाबा इनको हॉस्पिटल में ले गए, वहां 4 बेड थे और उस पे कफन डेड बॉडी पर ढक देते थे ना, पूरा ढक रखा था। तो बोले बच्ची एक एक का जरा कपड़ा हटाओ, तो उसमें देखा एक का डेड बॉडी थी, निशान कुछ नहीं था शरीर पे, लेकिन पूरा डेथ। दूसरे की टांग कटी हुई थी इतनी डेथ, तीसरे का सिर गायब था डेड, और चौथे को कुछ तो और कुछ नहीं, चारों की डेथ थी लेकिन किसी का सिर गायब, किसी की टांग गायब, किसी की बॉडी सलामत, किसी के सिर पे चोट काफी, बाकी डेड हो गया, मतलब चारों की डेथ दिखाई। तो बाबा ने देखा पहचानती हो, बोले बाबा हमारे तो चेहरे हैं, एक ड्राइवर था मैं था, तो मुझे हल्की सी फ्रॉच आकर रह गई, ड्राइवर सलामत रहा, थोड़ी चोट लगी उसको सिर में लेकिन कोई गहरी चोट नहीं आई, एक की बहन को टांग लगी जिसकी टांग कटी हुई थी और दीदी। तो बोले बच्चे आज तुम्हारा चारों का मरण दिवस था तुम्हारे प्रारब्ध के हिसाब से, लेकिन बाबा ने बचाया। क्यों बचाया? कि तुम बच्चे याद में थे और बाबा की सेवा में थे, क्योंकि अटेंशन लगते पूरा 100% अटेंशन था कि भाई आज कुछ होने वाला है तो याद में पूरा रहो, बिल्कुल बाबा की याद में। तो बोले याद में थे बाबा की शिक्षा तो रक्षा हो गई, और सेवा में थे इसलिए बाबा को आज बचाना पड़ा। तो बाबा भी ये कहता है कि 16 फरवरी तुम्हारा जन्म दिवस भी है मरण दिवस भी है, तो आज से तुम बच्चे इस 16 फरवरी को अपने जन्म दिवस के रूप में मनाना, प्रारब्ध के हिसाब से तुम्हारा जीवन पूरा हो चुका, लेकिन बाबा ने नया जीवन दिया है सेवा खातिर। ये सच्ची घटना है। तो अगर हम याद में हैं बाबा की तो बाबा 100% रक्षा करता है, नया जीवन देता है। तो समर्पण, संयम, सकाश, साक्षी भाव, याग सेवा और भोजन, अगर हम इसका ध्यान रखेंगे, और लास्ट है अशरीरीपन का अभ्यास, क्योंकि लास्ट में दवाइयां नहीं मिलेंगी, डॉक्टर भी नहीं मिलेंगे, कोरोना में कहां मिले, कोरोना में डॉक्टर मिले क्या, बाकी बाहर से लास्ट में दवाई भी नहीं मिलेगी, बीमारियां भी ऐसी होंगी, साधन भी नहीं मिलेंगे, सेवाधारी भी नहीं मिलेंगे, तो उस समय क्या करेंगे, तड़फेंगे नहीं। अशरीरीपन का अभ्यास, अवस्था शरीर को सुन्न अवस्था जिसे कहते हैं, तो बाबा कहते हैं अशरीरीपन का इंजेक्शन लगा दोगे तो फिर दवा की आवश्यकता नहीं है। तो अगर हम ध्यान रखेंगे तो 100% चारों हेल्थ हमारी अच्छी हो जाएंगी। और जो अकाल मृत्यु या जो चीजें बताई सच्ची घटना है ये, तो आप भी इसका लाभ ले सकेंगे। ठीक है, ओम शांति।